खुदावन की तरीफ और उसका शुक्र हो कि आज हम फिर पहले हम आवाज़ की सूरत में, लेकिन आज खुदा ने फिर मुमकिन किया कि हम रूबरू उसके हजूर एक दूसरे से बात करें और खुदा के कलाम को सीखें। सो खुदावन बहुत बड़ा है, वो महीब है, वो इज़्ज़त के लायक है, वो ऐसा खुदा है जो दुआओं का जवाब देता है। बहुत दफ़ा दुआओं का जवाब देर में और बहुत दफ़ा एक मिनट में। सो आए उस खुदा के हजूर उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए, उसकी सच्चाई में से उसके कलाम को सीखें। सो मेरे साथ निकालें आज नए अहदनामों में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका दो बाप, उसकी हम 22वीं आयत को आज मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आप जो सुबह को आ रहे हैं, आपको पता है कि हम इफ़सियों के ख़त में से सीख रहे हैं। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें, मैं कोशिश करूंगा कि ये माइक सही तरीके से लग जाए। अच्छा जी, हाँ जी, आवाज़ सही आ रही? आ रही जी। हाँ जी, इफ़सियों दो बाप उसकी 22वीं आयत, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, आयत 19वीं आयत से पढ़ें। पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह है, मसीह यसु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिला कर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसी में बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहां पर आज जो हम बात सीखेंगे, पालूस कहता है कि रूह में, रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं। जैसे कितना भी खूबसूरत हमारे पास मोबाइल हो, अगर उसमें सिम ना हो तो वो बेकार है। उसमें कितनी मर्जी हमें क्या मिल जाए, सहूलतें मिल जाएं कि आप इससे ईमेल कर सकते हैं, तस्वीर किसी को भेज सकते हैं, किसी को कॉल करके देख सकते हैं, सारी सहूलतें क्या हैं, बेकार हैं अगर उसमें सिम ना हो। और इसी तरह अगर मोबाइल कितना मर्जी बड़ा हो और अगर उसमें बैलेंस ना हो तो फिर भी वो बेकार है। इसी तरह खुदा का बंदा पालूस कहता है, हम सीख रहे थे पिछले दिनों में कि पालूस कहता है कि ईमानदारों, तुम जो हर एक हो, मिलकर मसीह में क्या बनते हो, खुदा का बदन बनते हो, ताकि तामीर किए जाओ। तामीर का जो लफ्ज़ हमने पिछले दिनों में देखा था कि जब किसी चीज़ को, किसी मकान को या किसी चीज़ को तैयार किया जाता है इस्तेमाल के लिए, किसी ने इस साज को बनाया, तामीर किया किस लिए, ताकि जब बजे तो सुनने वालों को क्या मिले, लुत्फ, मज़ा या रूह की ताजगी मिले। ये मेज़ बनाया गया ताकि हम इस पर किताबें रख सकें, खाना खाने के लिए एक ही मेज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत तरह का है। दरियों की बैठने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो कुछ पास ना हो तो हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने ऊपर लेने के लिए। एक ही चीज़ है लेकिन इस्तेमाल मुख्तलिफ है। पालूस रसूल यहाँ पर इस बात पर पहुँच के इस मकाम पर पहुँच के उन ईमानदारों से कहता है जो इफ़सस में रहते हैं, ख़त लिखते हुए उस सर्द खाना में, उस जेल खाना की सर्द हवालात में बैठे हुए, खुदा से बात करते हुए, रोमी हुकूमत के उन सिपाहियों के साथ उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये उस वक्त का क्या था, तरीक़ाकार था। आजकल के दौर में जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसे अलहदा चोरों के साथ, दूसरे मुजरमों के साथ बांध कर दिया जाता है, लेकिन उस दौर में जब कोई पकड़ा जाता था तो उस मुजरम के साथ एक सिपाही को क्या लगाई जाती थी, हथकड़ी लगाई जाती थी कि 24 घंटे उसके साथ रहे। सो पालूस की ये हालत है, और वो सिपाही उसको देख रहे हैं, कि वो दुआ कर रहा है, वो कलाम की बातें लिख रहा है, और यकीनन है कि पालूस झिझका नहीं, डरा नहीं, बल्कि उनको कलाम सुनाता रहा। और हालांकि ऐसा वाक्य हमें मिलता है फिलिपियों पहले बाब की 10वीं 11वीं 12वीं आयत में, कि कहता है कि मैं सिपाहियों को कलाम डरने से, कलाम सुनाने से ना झिझका, ना डरा, उनको सुनाता रहा। और तारीख बताती है कि बहुत से रूमी सिपाही यीशु मसीह के शागिर्द बने, यीशु मसीह को कबूल किया। सो कैद खाना में है पालूस रसूल, हम देख सकते हैं, और वो उनको कहता है 22वीं आयत में, और तुम भी, उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए लिखते हुए कहता है, और तुम भी बहम तमीर किए जाते हो, खुदा का घर इसलिए बनते जाते हो ताकि क्या हो, रूह, खुदा का जो रूह है तुम में बन बसे, तुम में रहे, ताकि तुम खुदा का मस्कन बनो। आज हमसे भी यही बात पालूस रसूल कर रहा है, आज खुदा हमको भी यही कह रहा है कि तुम मेरा मस्कन हो। मस्कन के लिए जो लफ्ज हैकल भी इस्तेमाल किया गया है, घर भी इस्तेमाल किया गया है, रहने की जगह, किसी की बसेरा करने की जगह, और फिर बहुत दफा खुदा की हजूरी की जगह की तरफ इशारा किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं बहुत दफा कि हम गिरजा घर में जा रहे हैं किससे बात करने के लिए, खुदा से। सो गिरजा घर खुदा की हजूरी की जगह है। फिर पालूस रसूल आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम खुदा के हजूरी की जगह हो, खुदा तुम में रहता है। नहीं यकीन, खुश हुआ आपने ये सवाल पूछा, मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 3 बाब, पहला करंथियों उसका 3 बाब, और यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल करंथियों की कलीसिया को, वो ऐसे लोग थे इससे पहले कि यीशु मसीह को कबूल करते, वो बुत परस्त थे, उसके उनके शहरों में इर्तमस देवी का मंदिर था, उसके उन शहरों में यूनानी खुदाओं के बहुत से क्या थे, मंदिर थे। सो पालूस रसूल उनको याद दिलाता है कि तुम कौन हो, अब तुम्हें दोबारा उन मंदिरों में जाकर उन हाथ के बनाए हुए पुतलों की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, उन औरतों की और उन परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की जो के इंसान ने बनाए हैं। सो पालूस रसूल उनको कहता है पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। मकदस से मुराद घर, सुकूनत की जगह, रहने वाली जगह, जैसे आप और हम सब के, यीशु मसीह ने कहा कि लूंबड़ियों के भट होते हैं, लूंबड़ियां कहां पर रहती हैं, भट्टों में, उन सुराखों में, और हवा के परिंदों के लिए क्या है, घोंसले, आदमियों के लिए सर रखने के लिए क्या है, घर है, सुकूनत गाह है, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर ढकने की जगह नहीं है। सो यीशु मसीह चाहता है हमारे अंदर रहना। सो यही बात पालूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और यही बात पालूस कहता है, पाक बनते जाते हो ताकि तुम भी उसमें बाहम तमीर हो, यानी कि एक बन जाओ, ऐसे तैयार हो जाओ ताकि इस्तेमाल हो। कांगो किसी ने बनाई है, जब हम इसे बजाते हैं तो हमें रूहानी सरूर मिलता है। टेबल किसी ने बनाया है, हम इस पर रखने के लिए खाने की, चाय की और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। कपड़े बनाए गए हैं हमें सर्दी से बचाने के लिए। सो पालूस रसूल कहता है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा के रहने की जगह। भला हम यकीन करें या ना करें, यही हालात थे उस कलीसिया में। वो भूल गए कि खुदा को ढूंढने के लिए, फिर वो वापस गए उन मंदिरों में जो बुत थे, जो मिट्टी के थे। मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, आप सबको पता है, खुदा ने शुरू से क्या किया, आदम को मिट्टी से बनाया, और फिर मूसा ने क्या कहा, तू खाक है और फिर खाक में मिल जाएगा। याकूब अय्यूब नबी ने क्या कहा, कि जैसे मैं अपनी माँ के पेट में से आया, वैसे ही मैं नंगा खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। सो एक हवाला ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पहला करंथियों 6 बाप उसकी 19वीं आयत। 6 बाप उसकी 19वीं आयत में भी पालूस रसूल दोबारा जरूरत महसूस करते हुए फिर उनको कहता है, हम इंसान होते हुए बहुत दफा भूल जाते हैं, बहुत दफा हम उन्हीं चीज़ों की तरफ तवज्जो करते हैं जो हम महसूस करते हैं कि भली हैं, अच्छी हैं। इंसान होते हुए हमें ज़्यादा फिक्र होती है कि हम कैसे नज़र आते हैं, हमारे बच्चों ने रोटी खाई कि नहीं, घर में राशन है या नहीं। ये इंसान होते हुए हमारी सोच है, ये खुदा की तरफ से हमें मिली हुई वो क्या है, कसरत है, मेहनत है, जो आदम के गुनाह करने के बायस खुदा ने कहा कि अब से तू बैठकर शहजादों की तरह नहीं खाएगा कि जिस मर्जी फल को उतारा खा लिया। बाग अदन में पहले ये माहौल था, उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, मेहनत या पसीना नहीं बहाना पड़ता था, हर नियामत हर बरकत उनके पास थी। बेशक वो देखभाल करते थे पौधों को, जैसे हमारे घर में अगर पौधे हों तो हम सड़े हुए पत्तों को निकालते हैं, इर्द गिर्द घास हो या कोई और चीज़, वो ये काम करते थे। लेकिन गुनाह के बाद क्या हुआ, खुदा ने आदम से कहा कि तू अपने मेहनत मरसीने मेहनत की परसीने की रोटी खाएगा, यानी कि तू बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। सो यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल उन्हें सिखाते हुए कहता है 19वीं आयत में फिर कि जो चीज़ें बनाई गई हैं ये आरजी हैं, तुम इन चीज़ों के पीछे ना भागो। क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, पहले कहता है कि तुम, अब कहता है कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। बसने का मतलब रहता है, सुकूनत करता है, तुम्हारे अंदर है, बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। सवाल पूछता है लेकिन उनको कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि ये सारी कुदरत तुम्हें किसकी तरफ से मिली है, खुदा की तरफ से, और तुम में और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, पास अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे कि करंथियों के जो माहौल था, जो लोग इबादत का उनका तरीकाकार था अपने देवी देवताओं की, बहुत बुरा माहौल था, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हम उसके बारे में अगर सोचना शुरू करें तो जब बुतों के आगे ढोल बजाया जाता था तो औरतें उस ढोल की आवाज़ पर जब नाचना शुरू करती थी अपने देवताओं के सामने, तो अपने बच्चों को इतने जुनून में आ जाती थी, अपने बच्चों को उस बड़े देवता के बड़े तसले में जिसमें आग जलती होती थी फेंक देते थे और ढोल की आवाज़ में उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को भूल जाते थे। यानी कि बहुत भयानक उनकी परस्तची जो देवी देवताओं की करते थे। तो पालूस कहता है कि तुम्हारे बदन खुदा का मकदस है और तुम अपने नहीं और कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए खुदा का जलाल जाहिर करो। यही बात खुदा हमसे चाहता है कि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। दो बार कहता है फिर उसे जरूरत महसूस होती है। मेरे साथ एक और हवाला निकाले, 2 करंथियों उसका 6 बाप उसकी 16वीं आयत। 2 करंथियों 6 बाप उसकी 16वीं आयत में पालूस रसूल की ये बात मुझे बहुत पसंद आती है कि जब कोई कहीं पर गलत हो तो वो उसे दुहराता है उस गलती को, ताकि उसके बच्चे, जैसे आप, हम सब इस बात से वाकिफ है कि जब हमारे बहन भाई या बच्चे किसी बात को बार बार गलती करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेटा इस बिजली के बोर्ड को जो कि नंगा है हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, करंट पड़ेगा, नुकसान होगा, बार बार हम कहते हैं। सो करंथस की कलीसिया, उनके दिमाग बहुत मोटे हैं, इसराइल की कौम की तरह बार बार बुत परस्ती में जाते हैं, बार बार यकीनन वो फिर वापस उसी हालत में उसी तरीकाकार को अपनाते हैं। तो पौलुस उनको कहता है, दूसरा करिन्थियों 6:5 उसकी 16वीं आयत में, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत। खुदा के मकदस को, वो कहता है कि खुदा के रहने की जगह को जो तुम हो, तुम्हें बुतों से क्या लेना देना, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। हम जिंदा खुदा का, कहता है मकदस है खुदा के रहने की जगह। फिर वो बयान करता है जो नबूवत की गई थी उनसे पहले हजारों साल, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा। पुराने हदनामा में देखते हैं खुदा पहले बियाबान में है, बियाबान में दिन में बादल की सूरत में उनके साथ था, रात को जब आग जलती थी तो वो आग, वो जलाली आग उनके खामों के दरमियान होती थी, और कोई वबा, कोई बीमारी, कोई तस्वीर, कोई किस्म किस्म की भी चीज़ उनके गिर्द नहीं ठहरती थी, क्योंकि खुदा उनके साथ था आग के सतून में। उसके बाद खुदा को हम देखते हैं खैमा में, वो खैमा में जाते हैं खुदा हैकल में, खुदा काहिन से बात करता है, वो खुदा के काहिन से कलाम सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं काहिन से बात, खैमों में बात, फिर हैकल में। हैकल का हुक्म दिया गया कि हैकल तैयार की जाए और मैं वहां पर जाहिर होऊंगा, लेकिन अब खुदा कहता है अब मैं बियाबान में नहीं, अब मैं खैमों में नहीं, अब मैं हैकल में नहीं, बल्कि अब तुम में रहता हूं। क्या लिखा है? खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। सो आज हम किसकी उम्मत हैं? खुदा की। खुदावंद यीशु मसीह के उस कफारे के वसीला से खुदा के लोग। और यही बात पौलुस कहता है इफिसियों 2:22 उसकी 22वीं आयत में, और तुम भी, मैं भी, आप भी, आप अपना नाम लगा सकते हैं, और मैं भी, फैसल तुम भी खुदा में उसके रूह के वसीला से तमीर किए जाते हो ताकि खुदा के रहने की जगह बनो। आप अपना नाम लगा सकते हैं, पौलुस कहता है, और तुम भी, तुम भी से मुराद वो उस उन, 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 उस ग्रुप के लोगों की तरफ इशारा करता है, जैसे आप हम सब ग्रुप में बैठे हैं, बजाय कि मैं ये कहूं कि भाई कैसर, भाई शराज, भाई रजेश, जमा में कहता हूं और तुम भी। खुदा यही हमसे भी कह रहा है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, बनाए जाते हो, क्या? ताकि खुदा, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आज जिस दौर, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम दुनिया की भाड़ दौड़ में, दुनिया की दौड़ में, दुनिया की बातों में, फिक्रों में बहुत दफा भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। मोबाइल बहुत कीमती है, खूबसूरत है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट में मेरे पास जो मोबाइल है उसमें मैं बोल सकता हूँ, मेरी आवाज़ को सुनकर उसे लिखता है, मैं कहूँ तो वो तस्वीर भेज देता है, मैं कहूँ कि मैं चाय की कोई जगह ढूंढनी हो तो कहता हूँ कि चाय का जगह मेरे लिए ढूँढो एक मिनट में, गिरजाघर में जाना है, गिरजाघर की जगह मेरे लिए पता निकालो एक मिनट में। सो मोबाइल खूबसूरत है, कीमती है, हर तरह का काम कर सकता है, लेकिन अगर सिम नहीं तो फिर बेकार है। इसी तरह हम यीशु मसीह में, जब जलोज पौलुस ने कहा रूह में, हमें रूह में चलने की ज़रूरत है, रूह में दुआ करने की ज़रूरत है, और रूह में खुदा से पुकारने की और मांगने की ज़रूरत है, ख़ासकर उन लम्हों में जब हम मुश्किल में हों, परेशानी में हों। कल जब मैं वापस आया तो थोड़ी सी नींद हासिल की और थोड़ा सा फ्रेश हुआ तो बाहर निकला तो एक दोस्त, मेरे अब्बू का दोस्त आया, और वो आते ही, फैसल भाई, सलाम जी, सलाम जी, ये वो, और उसका मशवरा, मेरी बीवी के दर्द थी घुटनों में और मैं उसे फलां बाबे के पास लेकर गया और दर्द जाती रही, और मैं सुनकर हैरान हो गया, वाह 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 वाह। सो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको हमदर्द लगेंगे, वो आपको खुदा की तरफ से उठा के कहेंगे कि बाबों, कब्रों, पीरों और दूसरी बातों की तरफ जाएं। जरा ये सोचें कि आपका खुदा जिसकी बात, जिससे आप बात कर सकते हैं, बजाय खुदा से बात करने के क्यों किसी के पास जाएं? सो आप खुदा का मकदस हैं, आप खुदा के लोग हैं, खुदा आपकी आवाज को सुनता है और जवाब देता है। मोबाइल की इस मिसाल को ना भूलें, आप वो मोबाइल से भी अहम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान को कहा गया है अशरफुल मखलूकात, यानी कि तमाम मखलूकात में अजीम, खुदा की सूरत पर बनाए हुए लोग। रूह के बगैर हम बेकार हैं। सो आए हम दुआ करें और हर रोज खुदा से कहें कि खुदा बाप अपने रूह की रहनुमाई में हमें चलना सिखा। कादर मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए और तेरा बेटा खुदा यसु मसीह नाम इज़्ज़त और जलाल पाए।